अब परमेश्वर ने नूह को जहाज से निकाला, अब सृष्टि आगे बढ़ रही है बहुत सुंदर रीति से, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसी के बाद जब हम जैसे 9:18 में आते हैं, 18 से आते हैं और 18-19 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, तो जब हम आगे पढ़ते हैं तो इन अध्यायों को हम एक मुख्य विषय दे सकते हैं, और ये मुख्य विषय है नूह एवं नूह के बेटों का पाप, और उसको कह सकते पाप श्राप आशीष, पाप श्राप आशीष। पाप भी दिखाई दे रहा है वहां पर, पाप के कारण में उनको श्राप भी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर आशीष को भी रख रहा है, और वो आशीष परमेश्वर की अंत तक चली आ रही है, और जिसको उस आशीष के अंत को हम प्रकाशित वाक्य तक में देखते हैं, देखेंगे अभी। सो परमेश्वर की योजना है, और इसीलिए पहला पत्र उसके पहले अध्याय उसके 20 पद में हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उत्पत्ति से पहले नियुक्त किया था, नियुक्त किया था, और प्रभु यीशु मसीह इन सब कुछ का मुख्य बिंदु है। बाइबल का मुख्य पुरुष जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को निकाल करके हम बाइबल को ना तो जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो हमारे लिए अर्थहीन होगा, और इसलिए हमें इस बात को समझना है। और इसीलिए पुराने नियम को कहा जाता है, पुराना नियम एक परछाई के समान है, जैसे एक व्यक्ति जब चलता है और आप उस व्यक्ति के आने से पहले उसकी परछाई को देखते हैं, शैडो को देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति आपके सामने आता है, और जब आप अगर आप उस व्यक्ति से मिल लेते हैं तो उसकी परछाई को देख करके आप उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं, फलाना जन आ रहा है। इसी प्रकार से जब आप नए नियम में यीशु को जान लेते हैं और तब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो आपको वो शैडो जो परछाई जो है वो स्पष्ट दिखाई देती, किसकी है ये, किसकी है, और फिर मेरे और आपके लिए वो परछाई धुंधली नहीं होती या कठिन नहीं होती समझना। कई बार हम कहते हैं पुराना नियम समझ में नहीं आता, समझ नहीं आता, लेकिन पुराना नियम परमेश्वर की दया से प्रभु यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो अब कहानी आगे बढ़ रही है, अब आगे चल के हम देखते हैं अब एक और चीज हुई, परमेश्वर ने नूह और उसके साथ और लोगों को दंड दिया, हमने पिछली बार देख लिया था सब कुछ। अब ये 9 से 18 से लेकर 11 के 32 तक करीब 74 है, इन 74 में परमेश्वर क्या कर रहा है, इन 74 में परमेश्वर क्या कर रहा है, एक एक पद में एक एक नाम इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो पदों में जो नाम आ रहे हैं वो इतिहास, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना केवल सृष्टि करता है लेकिन हमारा परमेश्वर इतिहास का परमेश्वर है, और गॉड इज गॉड ऑफ हिस्ट्री, हमारा परमेश्वर इतिहास का परमेश्वर, इस बात को हमें समझना है, और यही बाइबल की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिससे लोग इनकार नहीं कर सकते। जब हम आगे पढ़ते हैं, हमने देखा था नूह के बारे में, नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, क्यों नूह के परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है, जब उसको कहा गया कि ये जहाज को बनाया जाए उसने जहाज को बनाया, विश्वास के कारण उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और इतने समय तक धीरज के साथ उसने प्रतीक्षा करी, और उसके साथ साथ वो यीशु मसीह का या सुसमाचार का प्रचारक भी बनकर रहा, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी है। परमेश्वर ने नूह को उसके परिवार को न्याय में सुरक्षित रखा है, न्याय में सुरक्षित रखा है, क्यों, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, उसने परमेश्वर के साथ धीरज के साथ अपनी यात्रा को पूरा किया है, इसलिए परमेश्वर ने उसको न्याय के समय में सुरक्षित रखा है। यह मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी आशा है, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हम उसके आगे कार्यता के साथ धीरज के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मेरे और आपके लिए भी आशा है कि हम उसकी आशा में होकर न्याय में सुरक्षित हैं। तब आगे चल करके ना केवल ये, नूह ने अपने परिवार को अब नए युग में उसने प्रवेश कराया, ना केवल इतना लेकिन परमेश्वर ने नूह के साथ पहले बार एक वाचा बांधी है, जिस वाचा पर हमने पिछली बार ध्यान भी दिया था किस प्रकार से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी और उसको धनुष को दिखाया था, और उसके बाद तब हमने देखा था नूह किस प्रकार से कृतज्ञ होकर आराधना करता है, उपासना करता है और अपनी भेंट को परमेश्वर साथ अर्पित करता है, और हमने देखा था वो भेंट किस प्रकार से, वो आराधना या मेल बलि किस प्रकार से परमेश्वर को सुगंधित करती है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस बलिदान के द्वारा अपने पिता को सुगंध पहुंचाया है। सो हमने इन बातों को देखा। अब एकदम से कहानी थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई देती है। नूह मनुष्य है, ध्यान दीजिएगा, नूह मनुष्य है, यद्यपि परमेश्वर ने उस पर दया की है, लेकिन पाप उसके अंदर वास करता है। वो पाप रहित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो दोष रहित है, दोष रहित है, पाप रहित नहीं है। और इसलिए अगर नूह के अंदर ये घटना जो दिखाई गई है वो ना दिखाई जाती तो लोग उसको बिल्कुल पूरी रीति से पाप रहित मानते और शायद उसकी आराधना करते, उसकी उपासना करते, उसको ईश्वर के समान मानने लगते। लेकिन इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं, आगे हम चल के देखते हैं, अगर आप देखें 9-8 अध्याय के 21 पद में परमेश्वर ने क्या कहा, जैसे सब कुछ हुआ तो परमेश्वर ने इसके बाद जल प्रलय खत्म हो गया, 21 पद में, और यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को नाश का को शाप ना दूंगा, यद्यपि, वहां शब्द आया यद्यपि, फिर भी यह सब कुछ मैं ऐसा नहीं करूंगा। यद्यपि क्या है, वो कह रहा है यद्यपि बचपन से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। अर्थात क्या मतलब है, मनुष्य के मन में पाप है, और इसीलिए भजन 57 में दाऊद कहता है मैं पाप के साथ अपनी मां के गर्भ में पड़ा, 51:5। इसीलिए रोमियो उसका 3 अध्याय कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित। पृथ्वी पर बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, केवल यीशु मसीह के अलावा कोई भी व्यक्ति पाप रहित नहीं है, दोष रहित परमेश्वर में मनाता है। लेकिन परमेश्वर, और अगर मनुष्य पाप रहित होता तो प्रभु यीशु मसीह के आने की जरूरत ना होती, यीशु मसीह के आने की जरूरत ना होती। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने जब आरंभ में कहा था कि 3 में के बाद, जब 3:15 पद में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की तो उसके बाद 2 चलने लगी, एक लाइन धार्मिकता की है और एक अधार्मिकता की। और परमेश्वर के वचन में हम पूरी रीति देखते चले आ रहे हैं, यहां पर भी हम देखेंगे कैसे परमेश्वर उस धार्मिकता को लाइन को और आधार्मिकता लाइन को प्रदर्शित कर रहा है और कैसे धार्मिकता की लाइन बढ़ती चली जा रही है। परिस्थितियां भी हो रही है, पाप आक्रमण कर रहा है, मनुष्य का स्वभाव स्ट्रगल कर संघर्ष कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर किस रीति इसको आगे बढ़ाता चला जा रहा है। और तब यहां पर लिखा हुआ है 9 में उसके 18-20 पद में, नूह के पुत्र जो जहाज में से बाहर निकले थे वो शेम, हाम और एपेत थे। हाम करान का पिता हुआ। नूह के ये 3 पुत्र थे और इन्हीं से सारी पृथ्वी बस गई। नूह के ये 3 पुत्र थे और इन्हीं से सारी पृथ्वी बस गई। उसके बाद फिर देखिए आप 10 के 31 पद में, 32 पद में, ये अपने अपने वंशावली तथा जातियों के अनुसार नूह के पुत्रों के कुल हैं। जल पड़ने के पश्चात इन्हीं में से जातियां विभाजित होकर पृथ्वी भर में फैल गईं। नूह के 3 पुत्रों के द्वारा अब परमेश्वर ने क्या करा है, इस विश्व को भरा है, इस पूरे संसार को भरा है। और वही वर्णन हम इस 10 में और 11 में देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर इन 3 पुत्रों के द्वारा किस प्रकार से भूमि में, इस सारे पृथ्वी में लोगों को उत्पन्न कर रहा है, कैसे जाति वंश कुल बन रहे हैं और कैसे फैलते चले जा रहे हैं, जिसका वर्णन हम आगे भी चल के देखते हैं। और यहोशू में भी जब ये लोग कनान से निगम में जाते हैं तब हम देखते हैं किस प्रकार से उसका विभाजन का वर्णन पाया जाता है। परंतु यहां पर अब यह सब कुछ होने बाद अब कुछ घट गया घटना। अगर एक और पद को देखेंगे, अब यहां पर बैठ गया, लेकिन एक और बात जो लिखी हुई है 10:5, 10:5 में एपेद के वंशीवली के बाद क्या लिखा हुआ है, इन्हीं के द्वारा जाति जाति के तटीय प्रदेश अपनी भाषा कुल और जाति के अनुसार अपने अपने देश में अलग हो गए। यहां पर भाषा है, कुल है, जाति है, देश है। फिर उसके बाद 5:20 यही अपने अपने कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार हाम के वंशज हुए, एपेत के वंशज, हाम के वंशज। फिर उसके बाद आगे चल करके 31 यही अपने अपने कुलों भाषाओं देशों और जातियों के अनुसार शेम के वंशज हुए। ध्यान दीजिएगा जो चीज हम यहां पर देख रहे हैं कैसे आगे चलकर बाद में मैं उस पद को लाऊंगा। प्रकाश वाक्य में हम इन्हीं चीजों को देखते हैं एक नई रूप में, नई रूप में। सो यहां पर अब ये तीन पुत्र हैं, इन तीन पुत्रों के पार ये बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले एक घटना घट जाती है। घटना क्या घट जाती है? अब यहां पर हम थोड़ा देर के लिए एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और वो शायद मेरे और आपके लिए अच्छा होगा। किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि में कैसे किया, और इस सृष्टि में हम आदम और नूह को देखते हैं। पहली बात, आदम सर्वप्रथम सृष्टि जिसकी रचना परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था। नूह, उत्पत्ति 5:3, अब पाप आ गया, मनुष्य की समानता बिगड़ गई, परमेश्वर की समानता में होकर मनुष्य के रूप में आ गया। नूह मनुष्य की उत्पत्ति, आदम संतान, आदम समानतान स्वरूप में पाप के बीच का प्रभावकारी हो गया, उसमें हो गया। अब तुलना देखते रहिए पूरी रीति से जो हमने अध्ययन कर चुके हैं अभी तक। आदम की उत्पत्ति सिद्धता में थी, पर नूह की अब जो उत्पत्ति हुई असिद्धता में हुई। आदम परमेश्वर की सृष्टि का मूल स्रोत था, आदम सृष्टि का मूल स्रोत था। अब यहां पर जल पड़ने के बाद परमेश्वर ने नूह को सृष्टि का मूल स्रोत बनाया। परमेश्वर किस प्रकार से नूह को ले चुके चल रहा है? आदम को अदन की वाटिका में खेती का कार्य दिया गया। आदम जानते दूसरे अध्याय में वर्णन है। नूह भी खेती करने लगा, आगे चल के उत्पत्ति अभी हम आएंगे उसमें। नूह भी खेती करने लगा। आदम ने वाटिका का फल खाकर पाप किया, नूह ने खेती में दाख पीकर पाप किया। आदम का फल खाने के पश्चात नंगापन उजागर हुआ, नूह का भी उस मदीरा को पीने के कारण नंगापन उजागर हुआ। आदम के तीन पुत्र में से एक धार्मिकता की पंक्ति में, नूह के तीन पुत्र में से एक धार्मिकता की पंक्ति में। परमेश्वर कैसे चला? क्योंकि सृष्टि समाप्त हो चुकी है और सृष्टि समाप्त होने के बाद एक नई सृष्टि आगे चल रही है, नूह के द्वारा आगे बढ़ रही है, और इसको हमें समझना है। आदम की सृष्टि मानव बढ़ाने की आशीष एवं निर्देश हुई, फूलो फलो पृथ्वी पर में फैल जाओ, फूलो फलो पृथ्वी पर में फैल जाओ। नूह की सृष्टि मानव वंश बढ़ाने के लिए आशीष के साथ हुई, 9:7 और उसके बाद 18, 2-3 पद हम बार में देखते हैं। सो ये समानता है किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है कि क्या समानता है इन दोनों में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस बात को दिखा रहा है, दर्शा रहा है अपने वचन में कि किस प्रकार से परमेश्वर उसी रीति से सारी चीजों को आगे बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा। और ये हम इस बात है परिणाम समस्त मानव सृष्टि परमेश्वर के दंड में आ गया, क्योंकि पाप किया, पाप के कारण आदम ने पाप किया, उससे वंश आगे बढ़ा, परमेश्वर उसको नाश कर दिया सारी पुकुर को। लेकिन नूह बच गया, पर नूह में से भी पाप खत्म नहीं हुआ, वो अब पाप बढ़ता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। और तब परमेश्वर अब उसके आगे किस प्रकार से वो उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। सो हम जब इन दोनों का तुलनात्मक जीवन का अध्ययन करते हैं, मैंने संक्षिप्त में इन बातों को लिखा है, परंतु आप इसके बारे में और अधिक ज्ञान अध्ययन में जाते हैं। लेकिन किस रीति से नूह और आदम और नूह में हम समानता को देखते हैं, क्योंकि नूह भी आदम के समान मनुष्य है, पर परमेश्वर उसी चीज को जो नूह के साथ उसने वाचा बांध करके आगे बढ़ाना चाहा था कि उसकी सृष्टि फैले, फूले और फले और पृथ्वी में फैल जाए, वही नूह के साथ वो करना चाह रहा है और उन्हों के द्वारा वो करना चाह रहा है। सो हम इस बात को देखते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे कि जब हम बात को देखते हैं तो ये सच है। 20 पद से लेकर, अब मेरे साथ आ जाइए 9वां अध्याय 20 पद से, तब नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई। अभी हम देख चुके हैं नूह और आदम के बारे में। नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की एक बारी लगाई और वो उसकी मदीरा पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के अंदर नंगा हो गया। किस प्रकार से आदम ने पाप किया और पाप ने उसको नंगा किया, किस प्रकार से यहां पर भी उसके जीवन में हुआ। बाइबल के विद्वान कई तरह की बातों को रखते हैं नंगापन के, जब वो की परिभाषा को लिखते हैं, क्योंकि लैवावस्था उसके 18 अध्याय में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक अपने संबंधों के बारे में एक आज्ञाएं दी गई हैं, और आज्ञाओं के साथ में, क्योंकि अब संसार बढ़ चुका है, लोग रहने लगे हैं, और इसलिए नियम को बांधना जरूरी है, व्यवस्था को देना जरूरी है, और इसलिए परमेश्वर वहां पर कुछ ऐसे नियमों को देता है जो आपसी पारिवारिक संबंधों के बारे में और खास उसे यौन संबंध के बारे में कि किस प्रकार से। तो जो हम जब लवावस्था पुस्तक में जाते हैं और 18 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर नंगापन की तस्वीर कुछ और दिखाई दे जाती है, और इसलिए बाइबल के विद्वानों का अलग अलग मत पाया जाता है उसको लेकर कि शायद इसने कुछ ऐसा पाप किया था, लेकिन हम उस पर उतनी ज्यादा विस्तार नहीं। पर यह कि इसने नशा किया, और बाइबल में जब हम मदिरा के बात पाते हैं तीन शब्द इस्तेमाल हुए हैं, मदिरा है, दाखरस है और दाक मधु है। बहुत अच्छा अध्ययन है, कई बार हम बहुत सारी बहस करते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना परमेश्वर के वचन बहुत सारे पद हैं जहां पर नशे के बारे में बिल्कुल मना है। बाइबल साफ कहती है, अगर क्या नाम से यशा उसके 5:21-28 मदिरा मनुष्य को नंगा कर देती है, ठीक है, मदिरा क्या नाम से मती को भ्रष्ट कर देती है, यशा 28 में सबोवदेश कहता है मदिरा मूर्ख बना देती है, यशा 5 में कहता है हाँ उस पर जो मदिरा या नशा करता है। सो दो चीजें, उस समय में इसराइलियों के समय में प्रभु यीशु मसीह ने भी दाखरस पिया था, दाखरस दिया था, जो विवाह था उस समय दाखरस वहां पर प्रथा थी कि दासरत किया। दाखरस में और मदिरा में फर्क है, लेकिन दासरत किस रीति से बनाया जाता है, कैसे बनाया था, यह अलग है, इसका विषय अलग है। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन वचनों को लेकर अपने लिए आड़ ना बनाइए। कई बार अरे पौलुस ने भी तो कहा था कि तिमोथियस पेट दर्द के लिए कभी कभी तो थोड़ा थोड़ा पी लिया कर। कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ते और मोड़ते हैं, वो अच्छा नहीं है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और हमें पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। सो ये चीजें जो भी सीमा के अंदर है वो ठीक है, सीमा से बाहर है वो गलत है। अब यहां पर जब ऐसा हुआ तो लिखा हुआ है कि अब वो अपने कमरे में अपने उसमें तंबू में पड़ा हुआ है। 22 पद, तब कनान के पिता हाम ने, अब यहां पर हाम शब्द नहीं आया, एकदम से कनान शब्द आ गया। कनान शब्द, कनान जो है नू का पोता है, नू का पोता है, नू का बेटा हाम है, हाम का बेटा कनान है। कनान के पिता हाम ने अपने पिता का नंगापन देखा और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बताया। ये उसकी गलती थी, ये उसका अपराध था। उसको चाहिए था पहली बात कि अगर उसने इससे कुछ हुआ था तो उसको जाकर बाहर हल्ला न मचाना था, ये था, उसको जाके चुपचाप से अपने पिता को कवर करना चाहिए था। और मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए। कई बार हम दूसरे के पाप को ऐसा उजागर करते हैं, ऐसा उजागर करते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसको हमें समझना, सिद्धांतों को समझना है। एक वचन को लेकर हम सारे बाइबल के सिद्धांत को नहीं मनाते, हमें वचन वचन बताता है उजागर करना क्या है, दोष लगाना क्या है, किसे संभालना क्या है, किसे ताड़ना देना क्या है, ये अलग अलग चीजें जिनको समझना है। परंतु यहां पर इसने हाम ने एक त्रुटि की है और इस त्रुटि करने के कारण अब वो बाहर गया है, किसी भी रीति उसने अपने भाइयों को बताया। हो सकता था वो चाहता तो जाके अपने क्या नाम से पिता को कवर कर सकता था, लेकिन उसने देखो 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 पिताजी नंगे पड़े हुए, शायद संभवता है उसने। मेरे प्रियो, ये दुख की बात थी। और तब लिखा जैसे दो भाई आए तो इन्होंने क्या कहा, आकर 23 पद, पर उसने जाकर दोनों भाइयों को बताया, पर शेम और एपेत, शेम बड़ा है, एपेत सबसे छोटा है, हाम बीच में है। तीन भाई है, शेम बड़ा है, हाम बीच में है, एपेत छोटा है। तो इन्होंने कहा, और शेम और एपेत ने वस्त्र लिया और दोनों ने उसे अपने कंधों पर डाल करके उल्टे पग चलते हुए अपने पिता के नंगेपन को ढांप दिया और उनके मुख फिरे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के नंगेपन को ना देखा। एक पुत्र है जो पिता का ठट्टा उड़ा रहा है, दो पुत्र हैं जो पिता का सम्मान कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में जैसे हम आते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप विश्वास में आते हैं, स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने माता पिता का आदर करना। जो 10 आज्ञाएं आज हमने पढ़ी हैं और हमारे सामने दोहराई गई हैं, उन 10 आज्ञाओं में चार आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित हैं, और जैसे पांचवी आज्ञा है वो माता पिता या समाज से संबंधित है। जब हम आज्ञाओं को सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमें इस पर ध्यान देना जरूरी है। और इसीलिए इससे पहले तू चोरी ना करना, तो ये ना करना, तो करना, सबसे पहले तो अपने माता पिता का आदर करना। इवन कई बार आप जो विश्वास में आते हैं, प्रभु में आते हैं, और आपको अपने परिवार में रहते में विरोध का, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उस समय भी आपको प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर बुद्धि और समझ मांगना चाहिए, धीरज मांगना चाहिए, किस प्रकार से आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार करें ताकि वो जीते जा सके। यही सिद्धांत पति पत्नी में लागू होता है। अगर पत्नी प्रभु में आ गई है, परमेश्वर का वचन साफ कहता है पत्रस में इस बात को स्पष्ट शिक्षा है कि तुम्हारे व्यवहार के कारण तुम्हारा पति जीता जा सके। पति के कहता तुम्हारे व्यवहार के द्वारा तुम्हारी पत्नी जीते जा सके। सो हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारा व्यवहारिक एक दूसरे से संबंध, हमारा व्यवहारिक व्यवहार किस प्रकार का है, और यहां पर आरंभ में ही परमेश्वर इस बात की शिक्षा को देना चाहता है। अब इसी के बाद सारी कहानी आगे बढ़ती है। अब तीन बेटे हैं, और तीन बेटों में मैंने कहा पहले सबसे पहला बेटा शेम है, फिर हाम है और एपेत है। तब उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी नशा उतरा, लिखा हुआ है 24 पद में, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि छोटे पुत्र ने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ क्या किया। अतः उसने, अब यहां पर 25 पद से लेकर 27 पद तक इन तीन बेटों के लिए परमेश्वर श्राप और आशीष देता है। ध्यान दीजिएगा, इन तीन बेटों के लिए परमेश्वर श्राप और आशीष देता है, और ये इस कारण है ताकि मनुष्य समझाए कि किस प्रकार से परमेश्वर आने वाले दिनों में अपने चुने हुए लोगों को किस प्रकार से लेके चलेगा और उनके लिए एक सिद्धांत बनाएगा। परमेश्वर स्वाभौमिक परमेश्वर है, पृथ्वी के लोगों को बढ़ाना चाहता है, तो अब क्या होगा और कैसे होगा, किस प्रकार से, खास तौर से वो इस बात को ले जा रहा है कि इसराइलियों की भूमि हेतु, ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाहूं, इसराइलियों की भूमि हेतु एक वो विदेश नीति तैयार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सनातन योजना में लोग चुने हुए थे, और इसीलिए सच है परमेश्वर ने जो चुनाव का कार्य किया है वो उत्पत्ति से पहले से किया है। 12 परमेश्वर के वचन में कहते हैं, हम बार बार बोलते हैं ना, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। तो परमेश्वर की योजना चल रही है, और इस योजना में होकर परमेश्वर कैसे कदम बे कदम लेकर चल रहा है। तब परमेश्वर ने यहां पर पहली बात कनान से कुछ कहा, अभी हाम का नाम नहीं आया। फिर से मैं बोल रहा हूं, शेम का बेटा हाम है, हाम का बेटा कनान है, ये तीसरी पीढ़ी है। वो कह रहा है कनान शापित हो, वो अपने भाइयों के लिए दासों का दास होगा। अब वो यहां पर इसको जो श्राप दे रहा है वो इस प्रकार का श्राप दे रहा है कि अब उसको इनके अधिकार में रहना पड़ेगा। जब उस समय आशीष दी जाती थी तो आशीष में दो मुख्य बातें होती थी, एक अधिकार होता था और एक संपन्नता होती थी, अथॉरिटी एंड वेल्थ। ये दो चीज मुख्य होती थी जो आशीष में दी जाती थी। अगर आप आगे चल के देखेंगे उत्पत्ति उसके 49 अध्याय में आएंगे, 49 चैप्टर में 49 में अध्याय में आएंगे, जब अंत में याकूब अपने बच्चों को आशीष दे रहा है तो उसने यहूदा को आशीष दी, वो अधिकार की आशीष थी। यूसुफ को आशीष दी, वो संपन्नता की आशीष। समय नहीं कि मैं उस पदों को खोलूं, लेकिन सुंदर रीति से पर समझना है। तो परमेश्वर किस रीति से इन आशीष को बांट रहा है, दे रहा है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, किसको अधिकारी ठहरा रहा है, वो अधिकारी किसी और को ठहरा रहा है, कनान को नहीं ठहरा रहा है। वो कह रहा, तू अपने भाइयों के लिए दासों का दास होगा, दोनों भाइयों के। 26 पद में उसने ये भी कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो और कनान उसका दास हो। एक शब्द है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो। जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं और हम आगे इतवार में जाएंगे तो हम देखते हैं शेम के वंश से, इसके वंश से किस प्रकार से आगे चल करके हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता आया है, आगे चल के भी देखेंगे। इस वंश को परमेश्वर ने ठहरा दिया, क्या हो रहा है, दो लाइन चल रही हैं, एक और आधर्मिकता की लाइन है, एक और धार्मिकता की लाइन है। धार्मिकता का लाइन से ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, और वो किस प्रकार से चलते चलते आगे बढ़ेगा, ये उत्पत्ति के पुस्तक इतना अध्यायों का भेद है, किस रीति इसको लेके चल रहा परमेश्वर। और इसीलिए जब कुछ पदों को आगे चल के हम देखेंगे तो ये दूसरी है, शेम के लिए तू परमेश्वर धन होगा, कनान उसका दास होगा। एपेत के लिए तीसरी बात, परमेश्वर एपेत को बढ़ाए और शेम के तम्बू में वास करे और कनान उसका दास हो। अब एपेत और शेम के बीच में एक भाईचारा रहेगा। क्या हो रहा है तम्बू में, क्या मतलब विश्राम मिलेगा तुझे, उसके साथ सहायता मिलेगी तुझे, ये मिलेगा। ये कह रहा है एपेत को बढ़ाए, उसको बढ़ेगा जैसे मैंने यूसुफ के बारे में बताया संपत्ति में, वेल्थ में। उसके बाद शेम के तंबू में वास करे परंतु कनान उसके साथ उसका दास होगा। सो अब तीन पुत्रों में से, अभी आगे चल के तीन लाइन आगे जिसको हम आगे बढ़ के देखेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि परमेश्वर इन तीन को एक लाइन को चुन करके अलग ले जा रहा है जो आगे चल के धार्मिकता की लाइन होगी, और जिस लाइन में आगे चल करके परमेश्वर किस प्रकार से उसी से यहूदा, उसी से सारे वंश उत्पन्न होंगे और सारे आते आते धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह उसी से आएंगे और वो मेरे और आपके लिए उद्धार का कारण ठहराए जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अपने उस वचन को जो उत्पत्ति उसके तीसरा अध्याय 15 पद था उसको पूरा करना है, और परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले अपनी बात को कह के। उसकी योजना जो है पूर्वकालीन की योजना है, और इन आशयों में, इन सब कुछ में परमेश्वर किस रीति से चल रहा है, तब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं किस रीति से। अब ये 28 पद में, जल पड़ने के पश्चात नूह 300 पश्चात वर्ष तक जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की थी, तत्पश्चात उसकी मृत्यु होगी। अब नूह की भी मृत्यु होगी, और हम इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर ने इस बात को पहले से कहा था कि नूह बच गया है, नूह जहाज से निकल गया है, धर्मी है, सब कुछ है, लेकिन मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुराई उत्पन्न होता है, अर्थात उसके मन को पाप प्रभुता कर रहा है। और इसीलिए मैंने उस पद को दोहराया था कि दाऊद भी कहता है मैं अपनी मां के घर में पाप से उत्पन्न हुआ। इसीलिए रोमियों में पौलुस कहता है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप के छुटकारे से कौन मुझे और आपको बचा सकता है, कौन मुझे और आपको पाप से बचा सकता है? केवल एक है जो प्रभु यीशु मसीह। हमारे धर्म के काम हमें नहीं बचा सकते, हमारी रीति विधि हमको नहीं बचा सकती, हमारे जन्म के जो जिन पूर्वजों से जिन चले आ रहे हैं उनके काम हमको नहीं बचा सकते, लेकिन मुझको और आपको व्यक्तिगत रीति से उस उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता है, जो परमेश्वर की सनातन योजना में होकर के, उसकी उस आशीष में होकर के, उसकी उस प्रतिज्ञा में होकर के मेरे और आपके लिए अंत मनुष्य बनकर आ गया, मेरे और आपके लिए क्रूस पर वो मारा गया, मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, गाड़ा गया, मेरे और आपके पाप को उसने अपने पर ले लिया, लेकर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जूठा, ताकि जो को उस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, मुझे आपके बारे में नहीं, हो सकता आप में से यहां कोई लोग हों जो शायद पहली बार आज यहां पर आए, या जिन्होंने इस संदेश को, सुसमाचार को नहीं सुना, ये आपके लिए है। यदि आज आप मर जाए, मैं याद करता हूं अपने उस दिन को जब मुझसे एक प्रभु के सेवक ने पूछा था, मैं प्रभु को नहीं जानता था, उसने तीन प्रश्न पूछे थे मुझसे, भाई रॉली अगर आज आप मर जाएं आप कहां जाएंगे, मेरे पास उत्तर नहीं था। उसने कहा क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया है, मेरे पास उत्तर नहीं था। क्या प्रभु यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मेरे पास उत्तर नहीं था। लेकिन उस संध्या को मैंने घुटने के बल होकर के प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगी, उसको अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियो, यदि आज आप यहां पर हैं, प्रभु ने आपको जीवन दिया है, आपको स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके पास धन होगा, आपके पास बुद्धि होगी, आपके पास ज्ञान होगा, यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तु प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। और इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यीशु मसीह की आवश्यकता है, ताकि उस पर आप विश्वास करें और उसके द्वारा आप उद्धार को प्राप्त कर ले। मनुष्य के जीवन को कुछ पता नहीं चलता, और इसलिए मेरे प्रियो, इससे पहले हम आगे पढ़ें, मुझे और आपको ध्यान देना है, मैं और आप भी नूह की तरह कहीं ना कहीं पाप है, और इसलिए मुझे और आपको भी उद्धारकर्ता की जरूरत है। धन्य है वे जिन्होंने उसके मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोया है और उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करा है। परंतु काश आप वो हैं जिन्होंने आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया, आज खाली आत्मा जाइए, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। अब आगे चलकर हम दौड़ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब सबसे पहले 10 अध्याय के पहले पद पे, अब यहां पर नूह के पुत्रों को अर्थात शेम, हाम और एपेत की वंशावली है, जल पड़ने के पश्चात उसके पुत्र पे पहली एपेस से शुरू करता है। एपेस सबसे छोटा है, लेकिन वो एपेस पहले ला रहा है, फिर उसके बाद हाम लाएगा, फिर उसके बाद शेम को लाएगा। क्यों? सबसे पहले वो एपेस को ला रहा है, और एपेस से जो नाम को कह रहा है, जब हम पढ़ते चले आते हैं तो एपेस के बारे में लिखा है, एपेस के पुत्र गोमोर, मागोद, मादे, यादव, ये सारी चीजें तर्शीश, किती तथा देदान। और तब लिखा है 15 पद में, इन्हीं के द्वारा जाति जाति के तटवर्ती प्रदेश अपनी अपनी भाषा, कुल और जाति के अनुसार अपने अपने देश में अलग हो गए। अब ये लोग विभाजित नहीं हुए कई जगह, अभी आगे देखेंगे, लेकिन परमेश्वर उनको विभाजित कर रहा है। परमेश्वर को इसको कह रहा है, ठीक है तुम जाओ और पृथ्वी में फैल जाओ, फैल करके तुम अपना स्थान बनाओ, और इन्हीं के नामों के द्वारा नरक नगर भी बनाए गए। आपको याद होगा जब हम तर्शीश के बारे में पढ़ते हैं, नीनवे में क्या हुआ था, योना को परमेश्वर ने क्या कहा था, नीनवे को जा और जाके तू संदेश दे, वहां सुसमाचार प्रचार करके कि सारे लोग मुझे छोड़कर सब संसार में लगे हुए और मैं उन पर न्याय देने वाला हूं। लेकिन योना जो था उस वहां से छोड़कर के नीनवे को छोड़कर तर्शीश चला गया, क्योंकि तर्शीश बाद में आगे चलकर के एक बहुत बड़ा व्यापार का स्थान बन गया। वहां के जो जहाज थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, और सुलेमान राजा भी अपने यहां के लिए जहाज तर्शीश से मंगाया जाता, और उसने भी गलती करी थी। राजाओं के लिए चार नियम थे कि इन चार नियमों को तोड़ना तोड़ना, पहली चीज वो किसी रीति से तर्शीश से जहाज ना मंगना, मिस्र में ना जाना, घोड़े अधिक ना रखना, अधिक पत्नियों ना रखना, और सुलेमान राजा ने यही सारे नियमों को जोड़ा था जो व्यवस्था विवरण उसका 17:16-17 पद में दिए गए थे, उन्हीं चारों को तोड़ा था। तो तर्शीश, तो जितने भी हम नाम देख रहे हैं वो यही नाम के द्वारा, इन लोगों के नाम के से ही ये नगरों के नाम बच गए, देशों के नाम बच गए, और सब चीज ने मान। आज हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं इन सारी चीजों को, तो जो भी आज देश हम देख रहे हैं, बहुत सारे कुछ नाम बदल गए हैं, लेकिन कुछ आज भी वही नाम है, वही नाम है तर्शीश। और उसके बाद आगे चल के कर, तब उसके बाद वो हाम के बारे में आता। अब हाम में जितने भी नाम है ध्यान दीजिएगा, अब हाम शेम का और एपेद का विरोधी बन गया, विरोधी बन गया। अब शेम से जो आगे उत्पन्न होता, अब यहां पर जब छह पद से लेकर के 20 पद तक समय नहीं है कि हम उस पर जाएं। एपेद में करीब 14 नाम है, हाम में करीब 30 नाम है, और शेम में करीब 26 नाम है। लगभग ये 70 नाम है जो उनके पुत्र उनके पुत्रों के हुए जनरेशन में, जो उनके हुए 70 हैं, और इस रीति से 70 अलग अलग फैल गए। अब यहां पर हेम के द्वारा कूश है, मिश्र है, पूत है, कनान है, कूश के बाद निर्मोद है, इसके बाद तब 9 पद में, और निर्मोद के बारे में 8 पद, कूश निर्मोद का पिता हुआ, वो पृथ्वी का पर पहला पराक्रमी और वीर बना। निर्मोद पृथ्वी का पहला पराक्रमी बना, वो यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी था, इसलिए कहावत चल पड़ी यहोवा की दृष्टि में निर्मोद के समान पराक्रमी शिकारी। लेकिन ठीक है, बलवंत है, शिकार करता है, पर इसने शिकार न केवल वैसा शिकार किया, लेकिन इसका शिकार इसने मनुष्य को अपने अधिकार में करके के इसने आगे चल करके लोगों को मूर्ति पूजा की ओर धकेल दिया। और इसीलिए जब अब्राहम के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो अब्राहम की भी पृष्ठभूमि यही थी कि वो भी मूर्ति पूजक था, पर परमेश्वर ने उसको छुड़ाया बचाया था किसी से, जब हम आगे चल के देखेंगे तो देखेंगे। पर ये तो जितने भी नाम ये हैं वो कह रहा है, और इसने इतना विरोध किया कि इस आगे चल करके लोगों को भटकाया। परमेश्वर की इच्छा थी कि तुम पृथ्वी में फैल जाओ, पृथ्वी में फैल जाओ, पृथ्वी पर फैल जाओ, शुरू से बार 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 बार, क्योंकि बहुत बड़ा संसार था, बहुत बड़ी पृथ्वी थी, है ना, और परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन निर्मोद उसका विरोध कर रहा था और उसने यही चीज को भटकाया था। अगले अध्याय आगे 11वें अध्याय में उसको और विस्तार के साथ देखेंगे। तब आगे चलकर क्या कहता है 10वें पद में, उसके राज का प्रारंभ शिनार देश में बाबुल, एरेक, अंगद और कलने से हुआ। उस देश से वो अशूर को चला गया और नीनवे, रोहबी तथा कला को बसाया। अब सब आप नाम पढ़ते चले जाएंगे आगे चल के करान ये सब, लेकिन और एक और पद पढ़ना चाहूंगा, 19 पद में, जितने नाम आप पढ़ रहे हैं बाइबल में पढ़ते चले आ रहे हैं, बार बार उत्पत्ति में सुना है, लेकिन आपको समझ में आएगा कहां से शुरू हो रहे हैं। 19 पद में, और कनानियों की सीमा सिदोन से लेकर गरार की ओर गाजा तक तथा सदोम, अमोरा, अदमा और सोयोइम की ओर लाशा तक थी। अब देख रहे हैं सदोम अमोरा, सदोम अमोरा के पाप के बारे में आप जानते हैं किस प्रकार से उनका पाप बढ़ गया था, किस तरह से परमेश्वर उसको विनाश करना चाहता था। तो ये जो ये हाम है, हाम एक मुख्य तस्वीर है जो जितने भी इसने नगर बसाए हैं, जितने भी उसके बनाए, ये आगे चल करके ये सबसे ज्यादा यही लोग थे जिन्होंने इसराइलियों का विरोध किया है, परमेश्वर के लोगों का विरोध किया है। और इन्हीं देशों के नाम से, इन्हीं लोगों के नाम से आज भी कई देश बसे हुए हैं, मैं उसको यहां पर वर्णन नहीं करूंगा। पर हर कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान नाम से शुरू हुआ, क्या हो रहा है? एक और परमेश्वर की योजना है। अदन की वाटिका में सबसे पहले शैतान ने आक्रमण किया, और शैतान का आक्रमण यह था कि वो केवल आदम हवा को भटकाना नहीं चाहता था, लेकिन आदम हवा को भटकाने के द्वारा वो परमेश्वर की योजना को धूमिल करना चाहता था, नाश करना चाहता था, लेकिन उसमें कभी सफल नहीं हुआ। और ये आज भी चलता चला आ रहा है, आज भी चलता है। परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है, परमेश्वर ने आजादी दी है ना, परमेश्वर ने आजादी दी है, और इस रीति से। और तब उसके बाद ये सारा चीज बढ़ती, तब आगे चलकर के 21 पद से लेकर हम शेम के बारे में देखते हैं, 21 पद से लेकर जब 21 पद से आगे पढ़ते हैं तो शेम के बारे में, और तीनों के बारे में लिखा हुआ है कि इन्हीं से ये देश, ये कुल, ये भाषा, ये जाति, चार शब्द है, इन्हीं से ये देश, ये कुल, ये जाति, ये भाषा विभाजित हो गई। यद्यपि परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है, पर परमेश्वर अलाउ कर रहा है, अनुमति कर रहा है कि किस रीति से फैल जाए। लेकिन एक बात की आनंद की बात है जो मैं आगे ले जाना चाहूंगा। जब हम आगे पढ़ते हैं तो शेम के जो वंशावली दिखाई देता है, इसी वंशावली से, इसी शेम से आज भी हम जाएंगे, अगले इतवार को जाएंगे, कि किस प्रकार से परमेश्वर अब्राहम को लाता है और किस प्रकार से अब्राहम से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। 11 अध्याय जैसे ही खत्म होता है, 12 अध्याय में अब्राहम नया व्यक्ति आता है, और अब परमेश्वर अब्राहम को किस लेके किस रीति। तो इन 11 अध्याय में क्या हो रहा है, एक चीज और रह गई जो 11 अध्याय में, लेकिन अभी 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय में क्या हो रहा है, अब परमेश्वर इन्हीं लोगों के द्वारा नगरों को फैला रहा है, वंश फैल रहे, सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना आ रही है और ये सब कुछ हो रहा है। पर इनके विरोध के बाद, इनकी शत्रुता के बाद, पाप के बढ़ने के बाद, सब कुछ के बावजूद भी आप यात्रा करते हैं, शायद आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, और ट्रेन में जब आपकी रात में ट्रेन चलती चली आ रही है, ट्रेन चलती चली आ रही है, और पूरा खिड़की के किनारे आप बैठे, आपको बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद थोड़ी सी दूर से छोटी सी लाइट दिखाई देती है, छोटी सी लाइट, और ट्रेन जैसे धीरे 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 उस नगर की ओर बढ़ती चली जाती है, लाइट बढ़ती 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 चली आ रही है, और तब एकदम से आप उस नगर, उस स्टेशन पे आते हैं तो लाइट भी पूरी साफ दिखाई देती है, लोग भी दिखाई देते हैं, नगर भी दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देते हैं। यही पुराने नियम की कहानी है, यही पुराने नियम की कहानी है कि जैसे आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लाइट बढ़ती चली आ रही है, और जैसे ही नियम में आएंगे आपको पूरी चीज परमेश्वर के द्वारा स्पष्ट और खुली दिखाई दे जाएगी। परमेश्वर धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर उसको गुप्त करके नहीं रखा है, परमेश्वर अपनी योजना में उसको आगे बढ़ रहा है। लेकिन कैसे, अब थोड़ी देर के लिए मैं आगे आना चाहूंगा। जब ये सब कुछ है तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। आज हमारे पास केवल पुराना नियम नहीं है, आज मेरे और आपके पास नया नियम है, परमेश्वर का वचन है, और न केवल नया नियम नहीं है, लेकिन नए नियम के साथ साथ परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है जिसको परमेश्वर हमारे सामने रखा है। क्या होगा, इसी जाति, इसी वंश, इसी कुल में से जो शायद फैल रहे हैं, परमेश्वर का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में, प्रेरित काम में, उसके पहले अध्याय 8 पद में ये लिखा हुआ है कि और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पहली चीज मत्ती उसके 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाके सारी जातियों को, सारे लोगों को, समस्त जाति, समस्त लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, मेरा सुसमाचार प्रचार करो। उन्हें शिष्य बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो सारी चीज। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हर जाति में विभिन्न प्रकार से आज अपने सुसमाचार को पहुंचा रहा है। और तब उसके बाद जब आगे पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उंडेला, और उंडेलने से पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी प्रेतकाम 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलम, सामरिया और दुनिया के यहूदिया और दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। दुनिया के छोर तक, ना कोई जाति बचेगा, ना कोई वंश बचेगी, ना कोई कुल बचेगा, ना कोई देश बचेगा, हर एक जगह प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा और उसके प्रचार के द्वारा कलीसिया निर्मित होगी जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगी। हाँ, शेम के नाम का अर्थ है महिमा, ग्लोरी। शेम के नाम का अर्थ है महिमा, ग्लोरी। और वो महिमा उसमें छिपी है, वो महिमा उसमें छिपी है, और वो महिमा आगे चल के प्रकट होगी। और तब मैं अंत में इसको लाना चाहता हूं प्रकाश वाक्य में क्या होगा। अभी हम केवल पुराने नियम तक सीमित नहीं है कि केवल हम वहीं तक रहकर सोचें कि यह अध्ययन करें, एक तरीका वो भी है, लेकिन मैं उन सारे में परंतु मैं आगे की योजना जो परमेश्वर की योजना उसको लाना चाहता हूं। प्रकाश वाक्य उसका 14 अध्याय में आइए, कई जगह है लेकिन एक पद को आपके सामने, 13 अध्याय उसके 7 पद से, 13 अध्याय उसके 7 पद से। उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने के लिए, उन विजय पाने के लिए अधिकार दिया गया तथा प्रत्येक कुल, लोक, भाषा और जाति उसे अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है लिखा नहीं गया वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। एक और ये है कि जिनके नाम उसकी पुस्तक में नहीं है वे उसमें प्रवेश नहीं करने पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर 7:9 से देखिए, इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोक और भाषा में से लोगों को एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डालियां लिए स्यासर और मेमने के सामने खड़ी थी। और लोग ऊंची आवाज से पुकार कर कहते, स्यासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है, यीशु से ही उद्धार है। वो ग्लोरी जो शेम के नाम में छिपी हुई है, उस महिमा को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रकट किया और उस महिमा को उसने अपनी कलीसिया में दिया। और मेरे प्रियो ये सच है, शाप कई बार, आज हम जो हिंदू पृष्ठभूमि से आते हैं कई बार शाप के नाम से डरते हैं, कई बार नहीं विश्वासी भाई बनो, प्रभु में आने के बाद शाप कुछ नहीं है, शाप कुछ नहीं है, परमेश्वर ने हमें शाप से हटा लिया है, शाप से हटा लिया है। और इसीलिए नीति वचन उसका 26 अध्याय उसके 2 पद में है ना, जैसे गोरिया गौरैया फुदकती फिरती है उसी तरह से दिया गया शाप भी है, कोई असर नहीं होता। सबसे बड़ा परमेश्वर ने यीशु मसीह द्वारा मुझे और आपसे शाप से छुड़ा लिया। सो क्या हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में हम क्या देखते चले रहे हैं, परमेश्वर की योजना किस प्रकार से आगे बढ़ी, उस योजना को जो उसने 3:15 में कहा है, 3:15 में कि मैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, और वो आगे चल करके धीरे धीरे उस लाइन को आगे लेता चला जा रहा है और अपने उस धार्मिकता के लेखा में आगे बढ़ रहा है। जरूर हम चारों तरफ लोगों को देख रहे हैं, लोगों की निर्बलता है, लोगों की कमजोरी है, लोगों का स्वभाव है, लोगों के अंदर पाप है, पर उसी का निवारण करने के लिए परमेश्वर इस यात्रा में आगे बढ़ा रहा है। और मैं और आप धन्य हैं जिनके पास ये नया नियम है, जिस नए नियम के द्वारा हम परमेश्वर की उस योजना को और खुलासे के रूप में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अंधकार में नहीं रखा, लेकिन अपने पवित्र आत्मा को दिया है, अपने वचन को दिया है, ताकि उसके वचन को हम ध्यान दें, सीखें, समझें और उस पर विश्वास करें। और बार बार परमेश्वर वचन कहता है, और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, ताकि हम विश्वास करके उस पर जीवन पाए। परंतु परमेश्वर का वचन न केवल उद्धार के लिए है, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए किस प्रकार का जीवन मुझे व्यतीत करना है इसके लिए है, किस प्रकार से उस यात्रा में। और प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें ताकि हम सचमुच में अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप करके निर्बलता में भी उस पर निर्भर रहकर उससे पापों की क्षमा के छुटकारे का अनुभव प्राप्त करके धीरे से आगे बढ़ते चले जाए और महिमा, उसकी महिमा में मैं और संभागेंगे। परमेश्वर ने मुझे और आपको भी उस शेम शेम की रेखा में रखा है. अगली बार हम जब देखेंगे थोड़ा सा और विस्तार में जाएंगे. प्रभु सहायता करें. आइए प्रार्थना.